ईसु पंचणमुयारो सब पाप पणासन मंगलाणे पढ़म मंगल चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवल पंडतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरहंत लोगुत्तमा सिद्ध लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवलि पंडतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहंत शरणं पव्वज्जामि सिद्ध शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवलि पंडतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल खिली न खिली मलयांचल की शुचि शीतल वायु सुगंध समेत मिली न मिली कलिकाल कुठार लिए फिरता कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली भजले अरिहंत अरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली
आज अपन ये विचार करते हैं कि अरहंत प्रभु वीतराग है और वीतराग को किसी से कोई लेना देना नहीं होता। निंदा करो तो वो रुष्ट नहीं होते, स्तुति करो तो वो संतुष्ट नहीं होते। उनमें कोई राग द्वेष नहीं होता, वो किसी से कुछ लेते नहीं और किसी को कुछ देते नहीं। इस पर अपन आज देखते हैं शास्त्रों में आचार्यों ने क्या कहा है। समंतभद्र आचार्य स्वयंभू स्तोत्र में देखिए क्या कह रहे हैं। वासुपूज्य भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य कहते हैं, न पूजयार्थस्त्वयिवीतरागे न निंदयानाथ विवांत वैरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्नः पुनातु चित्तं दुरितांजनेभ्यः। तो ही वीत रागे विवांत वैरे सती, आप वीतराग हैं और आप विवांत वैर हैं, अर्थात विशेष रूप से आपने वैर को वांत कर दिया है। वांत कर दिया और तो उगल दिया है, आपने अपने अंदर वैर की कणिका को भी शेष नहीं रखा। तो हे नाथ, तो ये वीतरागे सती न पूजयार्थ, आपको राग नहीं होने के कारण आपको किसी की पूजा से स्तुति से प्रशंसा से कोई लेना देना नहीं। मैंने आप नहीं चाहते कि कोई मेरी पूजा करे प्रशंसा करे स्तुति करे। फिर दूसरी बात कह रहे हैं विवांत वैरे, आपने वैर को पूरी तरह उगल डाला तो न निंदया अर्थ, तो आपको निंदा से भी कोई लेना देना नहीं। कोई निंदा करे आक्रोश करे अपशब्द कहें भंडिमा पूर्ण असभ्य वचन बोले तो भी आपको उससे कोई लेना देना नहीं। तथापि फिर भी ते पुण्य गुण स्मृति, आपके पवित्र गुणों का स्मरण, न चित्तम हमारे चित्त को दुरितांजनेभ्यः पुनात् पाप के लेपों से पवित्र रखें। स्तुति करते हुए आचार्य महाराज भगवान से कह रहे हैं कि हमारे मन को पापों से दूर करें। कौन? आपके गुणों का स्मरण। हम आपके गुणों का स्मरण करते रहते हैं तो आपके गुणों का स्मरण हमारे मन को पापों से दूर रखे, ऐसी प्रार्थना है। आप वितराग है इसलिए आपको पूजा से कोई मतलब नहीं है, आप विवांत वैर हैं इसलिए आपको निंदा से कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी आपके पवित्र गुणों की स्मृति हमारे मन को पापों के अंजनों से पवित्र करें, ऐसी प्रार्थना की है। और पुनः आचार्य समंतभद्र स्वामी ने देखिए अनंत जित तीर्थंकर भगवान की स्तुति में क्या लिखा है, अपन बोलने में नाथ जोड़ करके बोलते हैं, नाथ जो है वो भगवान का वाचक है, वास्तव में नाथ नाम नहीं है। अब देखिए फिर से आचार्य कह रहे हैं, भवान उदासीनता, आप जो है वो उदासीन से भी अधिक उदासीन, यानी बिल्कुल राग द्वेष से परे हैं। तब भी सुहृत त्वयिश्री सुभग त्वमश्नुते द्विशंस्त्वयि प्रत्ययवत् प्रलीयते भवान उदासीन तमस्तयोरपि प्रभो परम चित्रमिदंतवेहितम्। अनंत चित्त 14वें तीर्थंकर भगवान से समन्तभद्र आचार्य कहते हैं कि हे प्रभो, त्वयि सुहृत, आपके प्रति सुंदर हृदय रखने वाला, अर्थात आपके विषय में जिसकी भावनाएं शुभ है, जो आपके आलंबन को प्राप्त होकर शुभोपयोग धारण कर रहा है, धर्म ध्यान कर रहा है, वह श्री सुभगत्वम अश्नुते, वैभव को और सौभाग्य को प्राप्त करता है। तो ये दुष्यन और आपके प्रति दुश्मनी रखने वाला, आपसे हमेशा खफा रहने वाला, आपसे नाराज रहने वाला, आपसे द्वेष करने वाला, प्रत्ययवत प्रलीयते, प्रत्यय के समान क्विप क्वीन आदि जो प्रत्यय होते हैं, वो प्रत्यय उनका सर्वापहारी लोप होता है। व्याकरण में एक शब्द है, आपने सुना हो जो व्याकरण पढ़ते हैं, तो कुछ प्रत्ययों में क्या होता है कि उसमें से कुछ हिस्सा तो निकल जाता है लेकिन कुछ हिस्सा रह जाता है। जैसे सी औजस अम औषस, तो इसमें सी औजस में ई निकल जाता है और स मात्र रह जाता है, तो रेफ सकार योर अनु विसर्जनीय, उसका विसर्ग बन जाता है, तो वो सर्वापहारी लोप नहीं कहलाया। सी में से ई का लोप हुआ तो वो आंशिक लोप कहलाया, सर्वापहारी लोप नहीं कहलाया। और कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जिनका सर्वापहारी लोप होता है, पूरी तरह से अपहरण होकर के वो लुप्त हो जाते हैं। वो कौन से प्रत्यय और ऐसे कौन से शब्द है जिनमें सर्वापहारी लोप करके प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो अपन ने एक बार इसका उल्लेख तो किया था, फिर भी आप किस स्मृति के लिए उसको पुनः दोहरा देते हैं। आपको स्मरण हो सम्यक शब्द है, सम्यक शब्द कैसे बना है, क्विप प्रत्यय से, और उसमें सम उपसर्ग लगा, उपसर्ग शुरू में लगता है, प्रीफिक्स बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, और बीच में जो रहते हैं उसको रूट बोलते हैं अंग्रेजी में, और संस्कृत में उसको धातु बोलते हैं। अंचु गति पूजन यो हो, अंचु धातु है, अब अंचु में पूरा का पूरा अंचु नहीं रहेगा, उसमें से भी कुछ लुप्त हो जाता है, शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया होती है, उसको व्युत्पत्ति कहते हैं व्याकरण में, शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति भी बोल सकते हैं। तो शब्द रचना की एक पद्धति है, तो उस पद्धति से देखने पर अंचु गति पूजनियों में अंश शेष रह गया, ऊ चला गया, फिर अंश में भी कुछ और प्रक्रियाएं हुई, तो फिर क्विप प्रत्यय लगाने पर जो अनुनासिक था वो भी चला गया, तो सम्यंच शब्द के स्थान पर सम्यक शब्द बन गया। क्विप प्रत्यय लगाने से सम्यक शब्द बन गया, और सम्यक का अर्थ समीचीन होता है और सम्यक का अर्थ पूज्य होता है, सम्यक का अर्थ यथावत भी होता है, अव्यय बन गया हो अब उसमें कोई विभक्तियों का प्रयोग नहीं हो। तो यहां आचार्य महाराज समंतभद्र स्वामी देखिए कहां से व्याकरण का उदाहरण देकर के समझा रहे हैं और भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि हे भगवान, जो आपसे द्वेष करता है उसकी दशा क्विक प्रत्यय के समान हो जाती है, उसका पूरा ही लोप हो जाता है, वो मिट जाता है। प्रलय को प्राप्त हो जाता है। लेकिन क्या आप उनके प्रति कुछ करते हैं? तो आचार्य कह रहे हैं कि प्रभु भगवान आप तयो हो द्वयोरपि उदासीनतम, आप उन दोनों के प्रति उदासीनतम बिल्कुल तटस्थ, कोई उनसे कोई मतलब नहीं आप, अर्थात आप वीतराग हैं। पर वीतराग होने पर भी ये दो घटनाएं घटती अवश्य, जो आपके प्रति शुभोपयोग करता है वो लक्ष्मी और सौभाग्य संपन्न हो जाता है, जो आपके प्रति अशुभ उपयोग करता है वह प्रत्यय के समान प्रलीयते प्रलय को प्राप्त हो जाता है, सर्वनाश को प्राप्त हो जाता है। ये घटनाएं तो होती है, तो इसका क्या अभिप्राय लेना? तो कभी भी अभिप्राय तक जाने से पूर्व कुछ ऊहापोह कुछ छानबीन कर लेना आवश्यक होता है। ये जैन न्याय है, जैन न्याय तत्काल किसी निर्णय तक नहीं जाता, निर्णय तक जाने से पहले ऊहापोह करता है। ऊहा तर्क करता है, अपोह जो असंभव है उसका निराकरण भी करता है। अन्यथानुपपत्ति, इस न्याय को जैन न्याय सत्यासत्य के निर्णय में लागू करता है। ऐसा न मानने से क्या होगा, ऐसा मानने से क्या होगा? तो न्याय से अगर अपन सत्यासत्य का निर्णय करते हैं तो वह निर्णय अचूक होता है, और अगर अपन केवल शब्दों से या कुछ पंक्तियों के आधार पर सत्यासत्य का निर्णय करने बैठ जाते हैं तो फिर चूक हो जाती है। जैसे अभी अपन ने ये जो पंक्तियां पढ़ी है, तो अपन ने वासुपूज्य भगवान की स्तुति में से एक काव्य लिया, अनंतनाथ भगवान की स्तुति में से एक काव्य लिया। वासुपूज्य भगवान की स्तुति में क्या लिखा था कि आपको पूजा से कोई मतलब नहीं है, आपको निंदा से कोई मतलब नहीं है, आपको फर्क ही नहीं पड़ता कोई पूजा करे या निंदा करे। क्यों? क्योंकि वीतराग है, आप वीतराग हैं, तो आपको पूजा की कोई आवश्यकता नहीं, आपके अंदर कोई कामना नहीं है कि मेरी पूजा हो, राग न होने के कारण इच्छा नहीं है। फिर कोई यदि निंदा करता है, आक्रोश करता है, अपशब्द बोलता है, अभद्र वचनों का प्रयोग करता है, तो बोले विवांत वैरे, आपने वैर को पूरी तरह उगल डाला है, तो आपके अंदर किसी के प्रति कोई वैर हो ही नहीं सकता, तो कोई निंदा करे आपको फर्क नहीं पड़ सकता। ये बात कह दी और यहां क्या कह रहे हैं, यहां आचार्य कह रहे हैं कि आप उदासीनतम हैं, अर्थात आप वितराग हैं, आप विवांत वैर हैं, दोनों को एक शब्द में कह दिया, तटस्थ। अब तटस्थ होते हुए भी जो आपके प्रति शुभोपयोग धारण करता है वह लक्ष्मी सौभाग्य को प्राप्त होता है, जो आपके प्रति अशुभ उपयोग धारण करता है वह प्रत्यय की भांति प्रलय को प्राप्त हो जाता है, उसका सर्वापहारी लोप हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है, पूर्णतः वह मिट जाता है। कितने ऐसे जीव हैं जिन्होंने जिनेन्द्र देव का आवरणवाद करके निगोद पर्याय को प्राप्त कर लिया, साक्षात आदिनाथ भगवान के जीव के पूर्व भव में जब वो महाबल राजा थे तब उनके चार मंत्री थे, शतमति, सहस्रमति, संभिन्नमति और स्वयं बुद्ध। तो स्वयं बुद्ध बार बार राजा को धर्म मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा देता था और बाकी तीन मंत्री उसको विषय विलास की ओर प्रेरित करते थे। तो नरक और निगोद के पात्र बन गए, जिन मार्ग के विरुद्ध प्रेरित करने के कारण वो नरक निगोद के पात्र बन गए और स्वयं बुद्ध मंत्री जो था वह निकट भविष्य में महाबल राजा का जीव आदिनाथ भगवान की पर्याय को प्राप्त हुआ, उससे पूर्व ही स्वयं बुद्ध मंत्री का जीव चरम शरीरी प्रीतिंकर मुनिराज होकर केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त कर लिया, स्वयं बुद्ध के जीव ने प्राप्त कर लिया, परम धाम को प्राप्त कर लिया। भगवान दोनों के प्रति तटस्थ है। तो हे प्रभु, आचार्य समन्वित स्वामी कह रहे हैं तव इदम इहितम परम चित्रम, आपकी यह प्रवृत्ति अत्यंत आश्चर्यकारी, है ना। आप तटस्थ रहते हैं लेकिन फिर भी ऐसे परिणाम आ जाते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है। अत्यंत चित्रम यानी विचित्र आश्चर्य संकारी इहितम चेष्टा है आपकी। अब इसको पढ़ करके निश्चित रूप से बहुत सारे जो सामान्य बुद्धि जीव है वो एक निर्णय को पकड़ लेंगे कि हाँ, भगवान अदाता है इसलिए वो न किसी को सुख दे सकते हैं न किसी को दुख। सुख और दुख अपनी सद्भावना और अपनी दुर्भावना से बंधने वाले कर्मों के उदय से प्राप्त होता है। देखिए इसमें ये जो विचार है, ये जो शब्दावली है, यह पूर्णतः असत्य नहीं है, लेकिन इसमें जो ये निर्णय हो रहा है कि भगवान न सुख दे सकते हैं न दुख दे सकते हैं, ये जो निर्णय आ रहा है इस पर थोड़ा सूक्ष्म विचार करना आवश्यक है। क्या भगवान के पास सुख देने की शक्ति नहीं है? ये एक विचारने की बात है। और जिनके पास सुख देने की शक्ति होती है उनके पास क्या दुख देने की शक्ति नहीं होती? देना या ना देना बाद की बात है, अभी अपन शक्ति की बात कर रहे हैं। जिनके अंदर अनंत शक्तियां हैं क्या उनके पास इतनी सी शक्ति नहीं हो सकती या नहीं होगी? तो अपन आचार्यों के वचनों पर अपन जाते हैं कि आचार्यों ने इस विषय में क्या कहा है। तो अपन एक ग्रंथ यहां पर खोलते हैं, तत्वानुशासन ग्रंथ की 129वीं कारिका देखते हैं। बिल्कुल वही पृष्ठ खुला है। भगवान अरहंत का ध्यान करने पर क्या होता है? तो ये ध्यान ग्रंथ होने के कारण इसमें ध्यान का वर्णन है। पूरा ग्रंथ ध्यान का ही ग्रंथ है, तत्वानुशासन। तो ग्रंथकार कह रहे हैं वीतरागोप्ययं देवो ध्यायमानो मुमुक्षुभिः स्वर्गापवर्ग फलदः शक्तिस्तस्य हितादृशी। अयं देवः, ये देव, ये अरहंत परमात्मा, वीतराग अपि, वीतराग हैं अपि फिर भी, मुमुक्षु भी ध्याय मानस सन, मुमुक्षु मुक्तमिच्छु मुमुक्षु, न तो मोक्षे इच्छु मुमुक्षु, मोक्ष के इच्छुक को मुमुक्षु नहीं कहते। मुक्ति के इच्छुक को मुमुक्षु कहते हैं। वो मुक्ति किसी भी बंधन से क्यों ना हो, जेल से छूटने की इच्छा रखने वाला भी मुमुक्षु है। मुमुक्षु शब्द के शब्दार्थ को देखें तो व्याकरण से, भाषा से, छूटने के इच्छुक जनों के द्वारा ध्यायमान, ध्यान को प्राप्त हुए अथवा ध्यान को प्राप्त होते हुए या ध्यान को प्राप्त होने वाले, होने वाले का अर्थ यहां भविष्यवाची न लेकर के वर्तमानवाची लेना, क्योंकि वाले शब्द जो होता है ना उसके दोनों अर्थ निकलते हैं। मोक्ष जाने वाले हैं वो भविष्यवाची हो गया, वर्तमानवाची भी होता है वाले शब्द का प्रयोग। उसका उदाहरण कभी हम स्मरण में आएगा तो बताएंगे। तो ध्यान को प्राप्त होते हुए यह अरहंत परमात्मा वीतराग होकर भी स्वर्गाप वर्ग फलग, स्वर्ग और मोक्ष फल को ददाति इति दह, देते हैं, प्रदान करते हैं। अब यहां प्रश्न आएगा कि वितराग है फिर देते कैसे हैं, क्या उनके पास दातृत्व शक्ति है, देने की शक्ति है? तो फिर इसका उत्तर है ही, क्योंकि तस्य शक्ति ही तादृशी। ग्रंथकार आचार्य कह रहे हैं कि उनकी शक्ति वैसी है, स्वर्ग और मोक्ष देने की शक्ति उनके पास है। तब फिर लगेगा कि नहीं, अभी तो जो समन्तभद्र आचार्य कह रहे थे उसमें तो भगवान उदासीनतम है, वीतराग है, और यहां पर भगवान दाता हो गए, तो फिर दोनों बातें कैसे संभव है? तो इसका समाधान है, धवल ग्रंथ में आचार्य वीरसेन स्वामी के सामने एक शिष्य प्रश्न करते हैं। सब 148 कर्म प्रकृतियों का वर्णन चलता है, वहां कोई शिष्य पूछता है, देखो दिमाग बहुत चलता है सभी का, जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका ज्यादा दिमाग चलता है। तो 148 प्रकृतियों का वर्णन सुन करके एक शिष्य के मन में विचार आता है कि हम इन कर्मों से तो दुनिया के सारे काम हो जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा काम हो जो इन कर्मों से नहीं होता? तो वो प्रश्न क्या पूछते हैं, करुणाए कारणम करुणेत्य कर्मम किंड उत्तम। इन 148 कर्मों में ऐसा एक भी कर्म नहीं है जिसके कारण करुणा उत्पन्न होती हो। बहुत बड़ी बात है। आत्मा से बंधे हुए 148 कर्मों में से कोई कर्म करुणा को उत्पन्न नहीं कर सकता। तो वो कह रहे हैं कि करुणा में कारणभूत करुणा नाम का कोई कर्म क्यों नहीं बताया? इस महान सिद्धांत ग्रंथ में, इस धवल ग्रंथ में, इस षटखंड आगम में करुणा नाम के किसी कर्म का उल्लेख नहीं है, क्या कारण है? तब आचार्य उत्तर देते हैं, ना करुणाए जीव सहावादो, सहावस कम जणिदत्त विरोहादोच। करुणा जीव का स्वभाव है और स्वभाव कर्मों से उत्पन्न नहीं होता। अगर स्वभाव को कर्म उत्पन्न करने लग जाए तो विरोहादो विरोध आ जाएगा। तो फिर शिष्य दूसरा प्रश्न पूछता है कि कम से कम अकरुणा में कारणभूत कोई कर्म बताना था। अगर करुणा जीव का स्वभाव है तो अकरुणा तो जीव का स्वभाव नहीं है ना, तो अकरुणा किस कारण से होती है उसका नाम कोई बताना था कर्म का, उसको उत्पन्न करने वाले किसी कर्म का नाम तो बताना था। आचार्य बोलते हैं इठत्ता दो, हम इसको मान्य करते हैं कि अकरुणा कर्म जनित है, लेकिन वो जिन कर्मों से उत्पन्न होती है वो कोई एक कर्म नहीं है। आचार्य कहते हैं कि सभी कषायों से अकरुणा उत्पन्न होती है, क्रोध से भी अकरुणा उत्पन्न होती है, मान से भी अकरुणा उत्पन्न होती है, माया से भी अकरुणा उत्पन्न होती है, लोभ से भी अकरुणा उत्पन्न होती है। इसलिए अकरुणा तो सामान्य रूप से कषाय का फल है, कषायों से अकरुणा होती है, सीधी सी बात। तो जिस प्रकार करुणा जीव का स्वभाव है, लेकिन तब भी शुभोपयोग का वर्णन करते हुए पंचास्तिकाय ग्रंथ में लिखा है, क्या लिखा है? तसिदं बुभुक्खिदं वा जीवं दठूण जोहु दुहित मणु पड़ी वज्जरि तम केवया तस्सेसा होदि अणुकंपा। पंचास्तिकाय ग्रंथ में आचार्य कुंदकुद देव कह रहे हैं कि शुभोपयोग के अंतर्गत कुछ भाव होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के भाव होते हैं, लेकिन उन सभी भावों को शुभोपयोग कहते हैं। तो ये अनुकंपा नाम का एक भाव होता है, वो भी शुभोपयोग का एक भेद है। और शुभोपयोग बंध का कारण है, उससे पुण्य का संचय होता है। तो स्वभाव बंध का कारण कैसे हो सकता है, ये प्रश्न आता है, ठीक है ना। पहले अपन उस गाथा को समझते हैं कि अनुकंपा किसे कहते हैं, यानी अनुकंपा, दया, करुणा, अनुक्रोश, हंतोक्ति, दया, ये सब जो है एकार्थवाचक है। तो दया हमने दो बार बोल दिया, कोई बात नहीं, ये सब एकार्थवाचक है। क्या परिभाषा है, तो आचार्य कहते हैं तस्सिदं प्यासे को, बुभुक्खितं भूखे को, कौन प्यासा भूखा, जीवं दठूण जीव, किसी प्यासे जीव को, किसी भूखे जीव को दठूण देख करके, जो हो दुहित मनो, जो नियम से दुखित मन हो जाता है, जिसका मन नियमतः दुखी हो जाता है, और मात्र दुखी होने तक उसकी सीमा नहीं है, परंतु वह परिवज्जितम किवया कृपा भाव को प्राप्त होकर के उसका उपकार करने लग जाता है, भूखे को भोजन देने लग जाता है, प्यासे को पानी पिलाने लग जाता है। तस्सेसा होदि अनुकंपा, बोलते हैं उसके पास ये अनुकंपा होती है, उसके पास ये करुणा होती है, और ये शुभोपयोग है, ये पुण्य का कारण है, जीव दया त्रियंश के प्रति भी हो सकती है, मानवों के प्रति भी हो सकती है, सभी जीवों के प्रति हो सकती है अनुकंपा। तो इसको शुभोपयोग में ग्रहण किया आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने, और इसको पुण्य बंध का हेतु बताया। तो स्वभाव तो बंध का हेतु नहीं हो सकता। अब इसमें अपन बारीकी से विचार करें तो समाधान ये प्राप्त होता है कि जैसे सम्यक्त को देवायु का आश्रय होता है, आश्रवाधिकार का स्मरण करें आप तत्वार सूत्र के छठे अध्याय में क्या लिखा है, सम्यक्तंच आयुबंध के आश्रव के प्रकरण में आचार्य महास्वामी कहते हैं कि सम्यक्त भी आयुबंध का आश्रव है। सम्यक दृष्टि को जो आयु बंधती है वो सम्यक तो उसमें हेतु बनता है। फिर आहारक नाम कर्म चारित्र प्रत्येक है, अर्थात बिना चारित्र के, बिना संयम के आहारक नाम कर्म का बंध नहीं हो सकता। आहारक नाम कर्म का अर्थ ये होता है कि जब कोई साधु कहीं विराजमान है, उनकी प्रबल भावना होती है कि मैं मेरु पर्वत के अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना कर लूं, लेकिन अभी यहां से जा नहीं सकते, क्या करें, तो फिर उनके मस्तक से एक हाथ प्रमाण, एक सुंदर आकृति बाहर आती है, और वो आकृति, पहले उसकी संरचना होती है, भव्य आकृति की रचना होती है, और उसके बाद वो आकृति, जब तक वो साधु छठे गुणस्थान में, उतने काल के भीतर भीतर वो जाकर के बड़े वेग से उन अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करके आ जाती, अथवा अगर कोई प्रश्न उठ रहा है उन साधु के भीतर, तो वो केवली श्रुत केवलियों से समाधान लेकर के आ जाती वो आकृति। इसको आहारक रिद्धि कहते हैं, बहुत भारी रिद्धि है, अति दुर्लभ है, बहुत कम लोगों को होती है। तो उसका कारण क्या है, आहारो अपमत्ते, आहारक प्रकृति का बंध अप्रमत्त सातवें गुण स्थान में होता है। अब इसका समाधान अपने को समझना होगा, पर चूंकि आज थोड़ी सी ज्यादा अधिक सैद्धांतिक चर्चा हो गई है, तो आज जितना आपने सुना है उसका एक बार आप स्मरण कीजिएगा। आज अपना प्रश्न उत्तरित नहीं हुआ है, अभी तक वह अनुत्तरित है। भगवान वीतराग है ये तो निर्णीत सत्य हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है, भगवान अरहंत प्रभु वीतराग है, विवांत वैर है, पर दाता है या अदाता, इसको समझने के लिए अपन ने सिद्धांत शास्त्रों में प्रतिपादित जीव के करुणा रूप स्वभाव का यहां पर आज वर्णन समझा है कि करुणा किसी कर्म से उत्पन्न नहीं होती, करुणा जीव का स्वभाव है। और फिर साथ में अपन ने पंचास्तिकाय की उस गाथा को भी देखा जिसमें आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं कि अनुकंपा पुण्य का हेतु है। अब दो कथन हो गए, धवला में कह रहे हैं कि करुणा कर्म जनित नहीं है, और पंचास्तिकाय में कह रहे हैं कि करुणा पुण्य बंध में हेतु है। तो जो कर्म जनित नहीं है वह भाव बंध का कारण कैसे हो सकता है? तो उसका समाधान ढूंढते ढूंढते अपन सम्यक्त और चारित्र तक चले गए कि सम्यक्त को आयुबंध का आश्रय बताया और चारित्र को आहारक रिद्धि जिस पुण्य से प्राप्त होती है उस पुण्य के बंध का कारण बताया। तो क्या सम्यक्त बंध का कारण है, क्या चारित्र बंध का कारण है, क्या करुणा बंध का कारण है? ये तीन प्रश्न अपने सामने खड़े हो गए, क्योंकि सम्यक्त के विषय में द्रव्य संग्रह ग्रंथ की गाथा में लिखा है अपरूवंतम, वो भी आत्मा का स्वभाव है सम्यक दर्शन, तो स्वभाव बंध का कारण कैसे हो सकता है? और तत्वार्थ सूत्र में कह रहे हैं कि आयु बंध का कारण। फिर चारित्र का वर्णन करते समय भी द्रव्य संग्रह की गाथा में लिखा है अपरूवंतम, वो भी आत्मा का स्वरूप है, आत्म स्वभाव है चारित्र, तो वो बंध का कारण कैसे हो सकता है? ज्ञान बंध का कारण कैसे हो सकता है? समय पाहुड़ ग्रंथ में लिखा है जम्मादु जहन्नादु नाण गुणादु उनो भी परिणमदि, ತಮ್ಮ ತೇಣದು ಬಂದು ಜಗನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸೆ ಪರಿಣಮ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಜೀವ ಕೋ ಉಸ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉಸ್ ಜ್ಞಾನ ಕೆ ಕಾರಣ ಬಂಧು ಬಂದ್ ಹೋತಾ ಹೈ ಬಡಿ ವಿಚಿತ್ರ ಬಾತ್ ಹೈ ಘಬರಾನಾ ಮತ್ ಈ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಚರ್ಚಾ ಸುನ್ಕರ್ ಕುಚ್ ಲೋಕ ಡರ್ ಜಾತೆ ಉನ್ಕೊ ಲಗ್ತಾ ಹೈ ಕಿ ಅರೆ ವೋ ಬಾಲಕ್ ನೇ ಸಾತ್ ಅಕ್ಷರೋ ಕಿ ಆರಾಧನಾ ಕರ್ಕೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಚಲೇ ಗಯೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಮುನಿರಾಜ್ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ ಸೆ ಬಸ್ ವೋ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಾ ರಾಸ್ತಾ ಹೈ ಕಿ ಭೀ ಸಾತ್ ಅಕ್ಷರೋ ಕೋ ಪಕಡ್ ಲೋ ಅವ್ರ ಆತ್ಮ ಕಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ ಲೋ ಈ ಸಾರಿ ಬಾತೆ ಸಮಜನಾ ಬಡಾ ಜಟಿಲ್ ಲಗ್ತಾ ಹೈ ಘಬರಾನೆ ಕಿ ಬಾತ್ ನಹೀ ಹೈ ಹರ್ ಕಠಿನ್ ಕಾಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮೇ ಅಸಂಭವ ಲಗ್ತಾ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಸಾಹಸ್ ಕರ್ನೆ ಪರ್ ವೋ ಅಸಂಭವ ಸೆ ಕಠಿನ್ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ ಔರ್ ಸಾಹಸ್ ಸೆ ಏಕ್ ಕದಮ ಆಗೇ ಬಡ್ಕರ್ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕರ್ನೆ ಪರ್ ವೋ ಸಂಭವ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ ವೀರ್ ಕಠಿನ್ ಕೋ ಸಂಭವ ಬನಾ ದೇತೆ ಕಾಯರ್ ಸರಳ ಕೋ ಭೀ ಅಸಂಭವ ಬನಾ ದೇತೆ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಘಬರಾಯಿಯೇ ಮತ್ ಆಜ್ ಹಮ್ ಇಸ್ಸೆ ಅಧಿಕ ಭಾರ ಆಪ್ಕೆ ಊಪರ್ ನಹೀ ಡಾಲೆಂಗೆ ಜಿತ್ನಾ ಆಪ್ನೆ ಸುನಾ ಉಸ್ಕಾ ಉಪಸಂಹಾರ ಭೀ ಆಪ್ನೆ ಸುನಾ ಸ್ಮರಣ ಮೇ ಜರೂರ್ ರಖನಾ ಔರ್ ಬನೆ ತೋ ದುಬಾರಾ ಇಸ್ಕೋ ಸುನ್ ಲೇನಾ ಬಹುತ್ ಆನಂದಪೂರ್ಣ ಸಮಾಧಾನ ಮಿಲೇಗಾ ಆಪ್ಕೋ ಔರ್ ಉಸ್ ಸಮಾಧಾನ ಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ಕೆ ಆಪ್ಕಿ ಭಕ್ತಿ ಮೇ ಚಾರ್ ಚಾಂದ ನ ಲಗೆ ತೋ ಆಪ್ ಹಮ್ಸೆ ಬೋಲ್ಬೇಕು